छोटे साहब, रितेश ने पुकारा। अभी ने रुक कर पूछा, रितेश सर आप मुझे बुला रहे हैं? वे दोनों भले ही एक ही स्कूल के टीचर थे, लेकिन उनकी आपस में ज्यादा बात नहीं होती थी, इसलिए एक दूसरे के लिए वे अनजान ही थे। रितेश थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर आगे बोला, जी मैं आप ही को बुला रहा था, आपको परेशान करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। अवि ने सहजता से उत्तर दिया, कोई बात नहीं, कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा। रितेश का पोता होने की वजह से आए दिन कोई ना कोई उससे मदद मांगता रहता था और अब उसे आदत हो गई थी। रितेश ने हैरानी से कहा, सच में? कल मुझे एक स्टूडेंट को अपना स्टूडेंट बनाने में बड़ी दिक्कत हुई और बाद में एक दूसरे टीचर ने धोखे से उस स्टूडेंट को अपनी क्लास में शामिल कर लिया। आपके दादा श्रेष्ठ शिक्षा ब्यूरो के अधिकारी हैं, इसलिए मैं जानना चाहता था कि क्या वे इस बात की जांच करके उस स्टूडेंट को वापस मेरी क्लास में भिजवा सकते हैं। रोहन एक ब्राइट स्टूडेंट था, उसे दाखिला देने के लिए रितेश को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन उस शर्त की वजह से उसे रोहन को विपिन के हाथों सौंपना पड़ा। उसके बाद कैंटीन से वापस आने के बाद उसे यह किस्सा सोच सोच कर गुस्सा आने लगा था, और जब गुस्सा बढ़ गया तो उससे रहा नहीं गया और वो अवि से मदद मांगने चला आया। अवि के दादा एक श्रेष्ठ थे और उन्हें शिक्षा ब्यूरो का मुख्य अधिकारी का पद मिला था। स्टूडेंट को एक टीचर से दूसरे टीचर की क्लास में शिफ्ट करना उनके लिए छोटी सी बात थी। अवि तेवर दिखाते हुए बोला, वापिस दाखिला बदलवाना? अगर वो स्टूडेंट अपनी इच्छा से दूसरे टीचर की क्लास में आया है तो दाखिला बदलवाना बहुत मुश्किल होगा। आपको पता है कि आजकल स्टूडेंट कितने जिद्दी हो गए हैं, अगर उन्हें कोई चीज ठीक नहीं लगती तो वे उसकी सूचना टीचर यूनियन और कोर्ट दोनों को दे देते हैं, और अगर इस मामले में भी ऐसा हुआ तो हम, रितेश ने उसकी बात काट कर कहा, स्टूडेंट की इच्छा नहीं थी, उसे ऐसा जबरदस्ती करना पड़ा था, इस बात की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अवि ने आगे समझाते हुए कहा, अगर वो स्टूडेंट बदली चाहता भी है तो भी अगर उसका टीचर उसे दाखिला वापस लेने की इजाजत ना दे तो भी मामला पेचीदा बन जाएगा, ये करना आसान नहीं है, स्कूल के नियम तो तुम जानते ही हो। फिर अवि को एक बात याद आई, लेकिन क्या तुमने अभी अभी धोखे की बात की? क्या मैं उस टीचर का नाम जान सकता हूँ जिसने धोखे से उस स्टूडेंट को अपनी क्लास में ले लिया? जवाब देते हुए रितेश को विपिन की याद आई और उसका गुस्सा और नफरत उसके चेहरे पर साफ उभर आई। वही स्कूल के सबसे बकवास टीचर विपिन, उसका नाम सुन अवि को भी गुस्सा आ गया। विपिन, तुम्हारे स्टूडेंट को विपिन ने धोखे से ले लिया? अगर वो विपिन बीच में ना आया होता तो कल उसे प्रशा के साथ रात का खाना खाने का मौका मिल ही गया था। एक इंसान जो सिर्फ लेवल 3 का ही लड़ाकू बन पाया था और जिसे टीचर एग्जाम में 0 नंबर मिले थे, उसे इतना गुरूर कि वो अवि की बात ना माने? क्या उसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं थी? अगर उस समय कल प्रशा उनके साथ ना होती तो कल ही वो उसे सबक सिखा देता, इतना मारता कि उसे जीने से ज्यादा मरना आसान लगता। रितेश को पता था कि अवि उसे मना भी कर सकता था, इसलिए उसने बड़ी ही सावधानी से आगे कहा, हाँ, उसके जैसे टीचर को कोई स्टूडेंट अपने टीचर के रूप में नहीं चुनना चाहता, इसलिए वो धोखे से दूसरों के स्टूडेंट छीन लेता है, इसलिए मुझे आपको परेशानी देने यहाँ आना पड़ा ताकि आप ये मुद्दा श्रेष्ठ को बताएं और हो सके तो मुझे मेरा स्टूडेंट वापस दिला दें। अवि ने हाथ हिलाते हुए कहा, श्रेष्ठ को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं, ये मुद्दा तो मैं ही अभी सुलझा देता हूँ। आप ये मुद्दा खुद सुलझाएंगे? रितेश ने पूछा। अवि ने शान से कहा, दूसरे टीचरों को भी दादाजी की मदद की जरूरत पड़ सकती है दाखिले के दूसरे मुद्दों के लिए, और हमारा मुद्दा उस बेकार टीचर से जुड़ा है जिसे तो यूं ही ठीक किया जा सकता है, इसके लिए दादाजी का टाइम खराब क्यों किया जाए? हम सीधे विपिन के पास चलते हैं और उसे दाखिला वापस देने के लिए कहते हैं, अगर माने तो ठीक, नहीं तो हम उसे मार मार कर अपनी बात मनवा लेंगे। ये सच था कि वो दूसरे टीचरों से इस तरह से निपट नहीं सकता था, लेकिन यहाँ बात विपिन की थी, वही टीचर जिसे 0 अंक मिले थे टीचर एग्जाम में, उसे ऐसा पाठ पढ़ाना तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। अगर उसकी कमजोरी को नजरअंदाज भी कर दें तो भी असल बात तो ये थी कि विपिन को बचाने के लिए स्कूल में कोई आगे नहीं आएगा। वो खुद ही विपिन को बुरी तरह पीट कर अपना गुस्सा निकाल लेना चाहता था और मौका खोज रहा था, लेकिन ऐसा कोई बहाना उसे कभी मिला ही नहीं। अगर वो बिना किसी कारण के उसे मारता तो प्रशा के मन में बनी उसकी अच्छी छवि खराब हो जाती। अब जब विपिन का धोखा सबके सामने साफ था और शिकार खुद अवि के पास मदद के लिए आया था, तो अवि को वो मौका मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। वो इसी मौके का फायदा उठाकर अपनी भड़ास विपिन पर निकाल सकता था। रितेश को लगा नहीं था कि अवि उसकी मदद के लिए इतनी आसानी से मान जाएगा, इसलिए वो बोला, लेकिन ये तो, अवि की आंखों में क्रूरता झलक रही थी और वो रितेश की बात बीच में ही काट कर बोला, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मेरे साथ आओ, अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो मैं ही तुम्हारा ये काम कर दूंगा। रितेश को दिख गया था कि अवि वाकई उसकी मदद करना चाहता था। ये देख रितेश बहुत खुश हुआ और उसने कहा, तो फिर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, इतना कहकर वे दोनों विपिन की क्लास की ओर बढ़ गए। उन्हें विपिन की क्लास तक पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, जहां उन्होंने क्लास के बाहर मुर्दे की तरह दिख रहे अनुराग और मदान फैमिली के बड़े बेटे रोहित को देखा। अभी ने उससे पूछा, रोहित मदान, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो दादाजी के पास ट्रेनिंग के लिए जाना चाहिए। वो भले ही श्रेष्ठ का पोता था, लेकिन उसकी पहुंच रोहित से थोड़ी ज्यादा थी। रोहित ने झुककर कहा, अभी सर, मेरी बहन को धोखे से क्लास में दाखिला दिला दिया गया, इसलिए मैं उसे वापस ले जाने आया था। अभी अनुराग ने तो अभी तक सोचा ही नहीं था कि उसे किससे अभी के बारे में जानकारी मिल सकती थी कि अचानक उसे अभी का नाम सुनाई दिया। उसने सिर उठाकर देखा, एक नौजवान सामने खड़ा था। वो उसे ध्यान से देखने लगा। अभी ने फिर पूछा, मिस रोमा मदान को? उसे और गुस्सा आ रहा था और फिर वो चीखा, इस विपिन की इतनी हिम्मत, रोमा मदान को फंसाने की कोशिश करने की हिम्मत कहाँ से आई उसमें? क्या उसकी जल्दी मरने की इच्छा है? लगता है अब उसे सबक सिखाना और भी जरूरी हो गया है। इतने लोगों को उसने पागल बनाया, इस बात की सजा उसे मिलनी ही चाहिए। रोहित ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन फिर अभी ने रोहित की ओर देखकर पूछा, अगर मिस रोमा मदान को भी उसने धोखे से अपना स्टूडेंट बना लिया है तो आप यहाँ बाहर खड़े क्या कर रहे हैं? अंदर जाकर उसे सबक क्यों नहीं सिखाते? रोहित ये कैसे कह सकता था कि उसे मार कर भगा दिया गया था? वो कोई बहाना सोच ही रहा था कि उसके साथ खड़े अनुराग ने जवाब दे दिया, वो क्या है ना, हमें पता था कि स्कूल का नियम है कि कोई भी किसी क्लास के बीच में अपनी व्यक्तिगत मुद्दे के लिए ना आए, इसलिए हमें लगा कि हमें क्लास खत्म होने तक बाहर ही प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अभी की नज़र अब जाकर साथ खड़े इंसान पर पड़ी। उसने पहचानने की कोशिश की लेकिन पहचान नहीं पाया, इसलिए पूछा, आप कौन? रोहित ने उसका परिचय कराया, ये अनुराग हैं, करीमनगर के मेयर के यहाँ काम करते हैं। अभी ने सिर झुकाकर नमस्ते किया और कहा, ओ तो आप अनुराग हैं, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। फिर आगे बोला, हाँ ऐसा नियम तो है कि कोई भी किसी क्लास के बीच में अंदर ना जाए, लेकिन ये नियम इस मामले में लागू नहीं होता। आप सभी मेरे साथ अंदर आ सकते हैं, आज मैं खुद ही इस इंसान से निपटूंगा जिसे ना तो स्कूल की इज्जत का लिहाज है और ना ही टीचर के पद का। सबको धोखा देना इसके लिए आम बात हो गई है। अभी को विपिन का विरोध करते देख रोहित की आंखों में भी चमक आ गई। बड़े ही जोश के साथ अभी के पीछे चल दिया। अनुराग पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन रोहित को जाते देख वो भी उनके पीछे चला आया। इधर विपिन की क्लास में 5 स्टूडेंट बैठकर बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे और विपिन उन्हें कुछ समझा रहा था। सचेतन तकनीक कराटे स्कूल की सबसे बेसिक तकनीक है, लेकिन उसमें भी कुछ कमियां हैं। जैसे उन सबका ये पहला लेक्चर होने के बावजूद वे सब इतने शांत बैठकर विपिन के शब्द सुन रहे थे, मानो वो अमृत बांट रहा हो और वे एक भी बूंद बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। विक्रम के सिवा क्लास के बाकी सब बच्चे टॉप स्टूडेंट थे, जिन्हें एंट्रेंस में अच्छे नंबर मिले थे और वो बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे। वे कभी किसी स्कूल में नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने सारे पोज और तकनीक सही ढंग से सीखे थे। वे कई टीचरों से पढ़ चुके थे और कईयों को तो लेवल 5 और लेवल 6 के एक्सपर्ट से पढ़ने का मौका मिल चुका था, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी क्लास कभी नहीं ली थी। ये लेक्चर सुनकर उन्हें अच्छा लग रहा था। पहले की पढ़ाई के कई प्रश्नों के उत्तर उन्हें आज के लेक्चर में समझ आ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि बताई हुई तकनीक को वे सब अभी ही करके देखें, वे उसी क्षण विपिन की तकनीक की जांच करें। ये लेक्चर वाकई में बहुत अच्छा था। विपिन के पढ़ाने का तरीका देखकर उन्हें एक बात तो समझ आ गई थी कि विपिन का स्तर बाकी टीचरों के बहुत ऊपर था। रेणु के लिए ये बात और भी बड़ी थी। मेयर की बेटी होने के कारण उसकी तकनीक और पोज उसके पिता चुनते थे। पहले उसे लगता था कि उसके पिता ही बेस्ट टीचर बन सकते हैं। आखिरकार मेयर बनने के बाद उसके पिता की शक्ति से हर कोई वाकिफ था, लेकिन विपिन की तुलना में वे बिल्कुल मेंढक जैसे लग रहे थे। रेणु को तो इस बात पर हंसी आ रही थी कि उसके पिता और विपिन सर में तुलना करना ही बेकार था। विपिन के तरीके सटीक थे, उसमें कोई गलतियां नहीं थी। तकनीक या पोज चाहे कोई भी हो, वो फौरन उसमें की कमियां ढूंढ लेता था और फिर बड़ी ही आसानी से उन्हें ठीक करने का तरीका भी बता देता था। उसकी बातें सुनकर हर कोई चकित हो जाता था और ये सोचने पर मजबूर हो जाता कि विपिन को इतना ज्ञान कैसे आता था। विपिन की एक बात से ही वे पूरा पूरा दिन सोच में डूब जाते थे और जब तक उन्हें पता लगता था कि बात आगे बढ़ गई है, तब तक विपिन बहुत कुछ बोल गया होता था और उन सब ने उसकी सिखाई कई बातें मिस कर दी थी। विपिन सर का स्तर बहुत ही ऊंचा था। उस समय उन पांचों को समझ आ गया था कि तकनीक का ज्ञान कितना गहरा होता था और विपिन की जानकारी उनकी समझ से भी परे थी। पहले मुझे लगा था कि विपिन सर किस्मत से ही उसकी ताकत बढ़ाने में सफल हो पाए थे, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि जितना ज्ञान विपिन सर को है, उसके हिसाब से तो सलाह देकर किसी की भी ताकत बढ़ाना उनके लिए कितना आसान होगा। उसके पास ऐसी हजारों सलाहें होंगी जिससे हर स्टूडेंट को ताकत बढ़ाने का मौका मिल सके। घमंड टूटने के बाद रोहिन विपिन की महानता देखकर कांप जाता था। विपिन सर की तुलना में रितेश सर तो हो, अगर मैं उनकी तुलना ना ही करूं तो ही अच्छा है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, उनकी तुलना हो ही नहीं सकती। जैसे कि वे दोनों अलग अलग दुनिया के निवासी हों। ये तो अच्छा हुआ कि उन्होंने वो शर्त लगाई, वरना इतने महान टीचर से मिलने का मुझे अवसर ही ना मिलता। पांचों बच्चे ध्यान से विपिन की बातें सुन रहे थे ताकि कोई जानकारी छूट ना जाए। ओ, अचानक क्लास का दरवाजा खुला और कुछ आदमी तेजी से अंदर आ गए।